नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जिसे राजा सुलेमान ने लिखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमें से प्रत्येक के जीवन में बड़ी दया के द्वारा देते हैं। आज जब हम आपके वचन में से फिर से एक बार सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि प्रभु आज हम आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण कर सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं, किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं। आप उनके साथ हो, उनकी सहायता करें, उनके जीवन में अपने आशीष प्रदान करें ताकि आज का समय हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि नीति वचनों का यह संग्रह लापरवाही से किया गया संग्रह नहीं है। यहाँ एक कहानी का वर्णन है जो परस्पर क्रमवद है। यह युवाओं के लिए बुद्धिमान होने की चुनौती है। उसे प्रबोधन किया जा रहा है कि ज्ञान बढ़ाने के लिए आप इसे सुने। उसे माता पिता से सुनकर आरंभ करना है। स्कूल जाने से पूर्व उसे घर में शिक्षा ग्रहण करना है, चाहे वह पीएचडी कर रहा हो या कुछ और अध्ययन कर रहा हो। ये सब घर की शिक्षाएं सदा उसके लिए उपयोगी ठहरेंगे। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के बारे में जानकारी पाने के लिए उसके वचन को हमें पढ़ना चाहिए। मनुष्य प्रायः कहता है कि आपको बहुत बुद्धिमान होना है और आपका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होना है, अन्यथा परमेश्वर का वचन समझना कठिन है। सत्य से हटकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर नहीं कहता कि यह आवश्यक है। इस अध्याय में जब युवक जीवन आरंभ करता है तो स्पष्ट किया गया है कि उसे परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा जानना है तो उसे अध्ययन करना होगा। वह जीवन के मार्ग में टाल मटोल नहीं कर सकता और न ही फूल चुन सकता है। उसे अपना पूरा मन बुद्धि में लगाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उसे परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम देखेंगे बुद्धि का स्रोत। नीति वचन 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। ध्यान दीजिए, हे मेरे पुत्र। स्पष्ट है कि निर्देशन पाने वाला एक युवक है। उसका आरंभ एक बालक रूप में परिवार में हुआ और वह बाहर के जीवन का सामना करने के लिए तैयार है और उसे कोई बुद्धिमान मनुष्य परामर्श दे रहा है। यह संभवतः उसका पहला पाठ है जिसकी शिक्षा उसे आज के स्कूलों में नहीं मिलेगी। आगे लिखा है, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। परमेश्वर की बातों को मानना आवश्यक है। उसकी आज्ञाओं से मन को भर लेना है। उन्हें अपने कीमती सामान के साथ जमा कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो अपने सेल्फ को देखने के लिए प्रति सप्ताह जाता है कि उसने जो कीमती सामान वहां पर रखा है वह ठीक है या नहीं। उसे जांचे। वह अपने धन के स्थान पर जाना चाहता है। एक महिला ने बहुमूल्य गहने एकत्र कर रखे हैं और वह उन्हें बार बार देखना पसंद करती है। परमेश्वर का वचन भी इसी प्रकार एकत्र करके छिपा रखना चाहिए। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में रखें। नीति वचन 2 अध्याय उसके 2 पद में आगे लिखा है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। ध्यान से सुन अर्थात कान खोले रख। किसी बात को सिर में घुसने के लिए कान से प्रवेश करना होगा। उसका अंतिम स्थान हृदय होता है। परमेश्वर का वचन हृदय में पहुंचते ही समझ उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, उसके आदेश आग्रह और चुनौती का अंत यही होता है। नीति वचन 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। प्रेरित पत्रस कहता है, 1 पत्रस की पत्री 2 अध्याय के 2 पद में, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या आपने कभी किसी शिशु को देखा है जब उसकी माता उसके लिए दूध की बोतल तैयार करती है, वह कैसे दूध के लिए हाथ पांव फेंकने लगता है, वह मचलने लगता है, वह दूध की लालसा करता है। परमेश्वर की संतान को भी वचन रूपी दूध के लिए वैसे ही मचलना चाहिए। मैंने आज के आत्मिक अभियानों में कुछ ऐसा भी देखा है। वहां आप परमेश्वर के वचन में एक नया जोश देखते हैं। मैं अनेक युवाओं को टिप्पणियां लिखते हुए देखता हूं। मैं अनेक स्थानों में प्रचार करने के लिए जाता हूँ और कह सकता हूँ कि वहाँ परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जिसका प्रमाण वचन के प्रति मनुष्य की लालसा है। समझ के लिए अति यत्न से पुकारें। स्मरण रखें कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल अर्थात आरंभ है। यहाँ पर शब्द है पुकारें। यदि विद्यार्थी आवाज उठाए तो मैं ऐसी पुकार सुनना चाहता हूँ। हमें समझ की आवश्यकता है। यह युवकों के लिए परामर्श है। समझ के लिए अति यत्न से पुकारें। नीति वचन 2:4 में आगे लिखा है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। अमेरिका में एक स्थान मृत्यु की घाटी कहलाता है, क्योंकि वह रेगिस्तानी क्षेत्र था और वहां चांदी की खदानें भी थी जो प्राण घातक थी। वहां चांदी पाने के लिए आने वाले अनेक मनुष्यों ने जान गंवाई थी। चांदी प्राप्त कर लेने के बाद भी उन्हें उसे बेचने के लिए अनेक बलिदान करने पड़ते थे। बुद्धि को चांदी के समान खोजें, ऐसे वैसे नहीं, वह अति मूल्यवान वस्तु है। नीति वचन 2:5 लिखा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। वह ऐसी बात के बारे में कह रहा है जो आध्यात्मिक पठन पाठन से कहीं बढ़कर है। मैं बाइबल पढ़ने मात्र में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं अनेकों को जानता हूं जो वर्षों से बाइबल पढ़ रहे हैं, परंतु उनका ज्ञान घास चर रही बकरी से अधिक नहीं है। आप अपने मन मस्तिष्क को धार्मिकता का आवरण पहनाकर कुछ बाइबल पद पढ़ लें तो आवश्यक नहीं कि आपने वचन की शिक्षा ग्रहण कर ली है। वचन को अंतर्ग्रहण करने के लिए कान खुले रखना है, मन को लगाना है और उसके लिए मचलना आवश्यक है। आपको पुकारना होगा, चांदी की तरह उसे खोजना होगा। आपको एक छिपे हुए खजाने के समान उसे खोजना होगा, यत्न करके उसको ढूंढना होगा, तब आप कुछ सीख पाएंगे। इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का भय क्या है और परमेश्वर का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यदि आज तक आपने ऐसा नहीं किया है, इसका मतलब आज भी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं। मैं एक बाइबल स्कूल में पढ़ा रहा था और वहां अति धर्मी विद्यार्थी आकर परीक्षा की सुबह कहते थे, सर हम परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कल रात हम प्रार्थना सभा में गए थे। मैं उनसे पूछता था, आपने किस बात के लिए वहां प्रार्थना की? वे मुझे बताते कि उन्होंने भारत के लिए प्रार्थना की, अफ्रीका के लिए प्रार्थना की और अनेक देशों के लिए प्रार्थना की। मैं उनसे पूछता, आप जानते हैं कि आपके लिए कल रात प्रार्थना करने का मुख्य विषय क्या था? आपको कल रात प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे आश्चर्यचकित हो कहते थे, हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं कहता, पढ़ने का भी तो समय होना चाहिए। मैं उन्हें नीति वचन 2 दिखाता और कहता, कल रात तुम्हारा समय खुदाई करने का था, खोज करने का समय था। यहाँ प्रार्थना करने की कोई बात नहीं कही गई है। वे स्कूल में परमेश्वर का वचन सीखने आए हैं। मैं उन्हें परीक्षा से छुट्टी कभी नहीं देता था, चाहे वे प्रार्थना सभा का ही समय या कारण क्यों ना हो। कुछ बाइबल पढ़ने की शिक्षा दी गई है। वे बाइबल का एक अंश पढ़कर बाइबल को अपने तकिए के नीचे रख देते हैं। मैं ऐसों से सदैव यही कहता हूँ, बाइबल तकिए के नीचे रखने से उसमें निहित ज्ञान आपके मस्तिष्क में नहीं घुसेगा। परमेश्वर का वचन सीखने की रीति यह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे स्मरण है कि हमारे सेमिनरी अध्ययन में हमें एक बड़ी ही अरुचिकर पुस्तक पढ़ने को दी गई थी। वह भी हमारी परीक्षा के पाठ्यक्रम में थी। अतः किसी ने प्रोफेसर साहब से कहा, सर यह पुस्तक बड़ी ही अरुचिकर है। प्रोफेसर ने उत्तर दिया, उसे अपने पसीने से तर कर लो। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए उठपटांग तरीका काम में नहीं लिया जा सकता है। परिश्रम से गहराई नापने की अपेक्षा अन्य कोई और तरीका नहीं है। परंतु इसमें उच्च बौद्धिक स्तर की आवश्यकता नहीं है। अगला पद हम देखते हैं, दो अध्याय उसके 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। यदि आपको बुद्धि की आवश्यकता है तो परमेश्वर से मांगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पौलुस कहता है, जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और जो कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये बातें परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता है। वह आज हमारे शिक्षक होने के लिए भेजा गया है। मैंने अपनी युवावस्था में यह सत्य सीखा था कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें मेरे लिए खोलेगा। जी हाँ, यह एक अद्भुत सत्य है। यही कारण है कि जिनके पास बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं हैं, वे परमेश्वर के वचन के ज्ञान में दक्ष हैं। सेवकाई में मेरी युवावस्थाओं के दिनों सुबह 6 बजे प्रभु के दासों के लिए रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। प्रभु के दास अधिकतर उसे नहीं सुनते थे, परंतु युवा प्रचारक और अविवाहित होने के कारण मैं उसे सुनता था। मैं परमेश्वर का वचन सिखाने का प्रयास तो करता था, परंतु किसी को रुचि नहीं थी। वहां से प्रतिदिन एक महिला निकलती थी और वही मेरी कक्षा सुनती थी। एक दिन मैं सूचना पट पर कुछ लगा रहा था, वह आई और कहने लगती, सर, मैंने आपका सुबह का कार्यक्रम सुना। और फिर वह कार्यक्रम के विषयों पर चर्चा करती। उसमें सच्ची आत्मिक बुद्धि थी। उसने केवल स्कूल तक की ही शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु मैं कहता हूं कि उसमें कलीसिया के किसी भी सदस्य से अधिक आत्मिक ज्ञान था। उसके पास एक बाइबल थी और परमेश्वर ने उससे बुद्धि दी थी। मैंने उसकी बाइबल से अधिक पुरानी बाइबल किसी की नहीं देखी। वह उसे पढ़ती थी, वह उसे समझती थी, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाया था। जी हाँ, बुद्धि यहोवा ही देता है। डॉक्टर हेरी ए आयरनसाइड ने कहा था, यह भय योग्य बात है कि वे जो अनमोल सत्यों को समझते और उनका मान रखते हैं, उनमें यत्नशील बाइबल अध्ययन घटता जा रहा है। मुझे भय है कि यह आज भी सच है, जबकि मैं यह लिख रहा हूं और बाइबल अध्ययन में रुचि की वृद्धि हो रही है। बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। हम उसकी वाणी कैसे सुन सकते हैं? मैं सदा कहता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा हमसे बातें करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, तो आप उसके वचन को पढ़िए। नीति वचन 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। आज अनेक विश्वासी अंधकार में हैं। वे नहीं जानते कि कहां जाएं। उनकी समस्या का कारण स्पष्ट है कि वे परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। इस पुस्तक में हमें परमेश्वर जो कहता है वह दिया गया है। परमेश्वर का वचन खराई से चलने वालों के लिए ढाल ठहरता है। वह ऐसा ही करता है और करेगा भी। वह अव्यवस्थित काम नहीं करता। आपको परमेश्वर के वचन की खोज करना है। नीति वचन 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। देश के अगुए स्वयं परमेश्वर के वचन की अगुवाई में नहीं है। परमेश्वर उनकी अगुवाई करना चाहता है। वह जिसमें परमेश्वर के वचन में प्रकट सत्य के सामर्थ को पाने की लालसा है। जी हाँ, उसके लिए परमेश्वर एक ढाल है। वह उनकी रक्षा करेगा और न्याय के मार्ग में उन्हें थामे रहेगा। मुझे लोग पत्र में लिखते हैं, मैं देख सकता हूं कि आप सत्य को थामने वाले हैं। मुझे सुनकर अच्छा लगता है, परंतु मात्र यही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सत्य मुझे जकड़ ले। इन दोनों बातों में महान अंतर है। हमें चिताया गया है कि अंतिम दिनों में झूठे शिक्षक आएंगे। मैं उनकी श्रेणी में गिना जाना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। मैं भविष्यवाणियों या युगों के ज्ञान या कलिसियाई तथ्यों या दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं। इसकी तो चारों ओर कोई कमी नहीं है। हमें आवश्यकता है उन मनुष्यों की जो धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे युवक के बैरी कौन है। नीति वचन 2 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। आप आसानी से छले या ठगे नहीं जाएंगे। परमेश्वर के वचन में बने रहने के कारण आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। नीति वचन 2 उसके 13 से 15 पद में लिखा है, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मग्न रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, मैं जब से सेवा में आया हूं तब ही से मेरी प्रार्थना यही रही है, हे प्रभु, दुष्टों को मुझ पर हावी न होने देना। मेरे मित्रों, वे हमारे चारों ओर हैं। नीति वचनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर की संतान के दो बैरी हैं, दुष्ट जन और अपरिचित स्त्री। युवक अपने जीवन में कदम रख रहा है तो उसे सचेत किया जा रहा है कि वह दुष्टों से संभल कर रहे। उनकी संगति करना युवकों के लिए घातक सिद्ध होगा। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि जब उसकी उम्र 16 वर्ष की थी, उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे एक कार की कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। जब वह नौकरी के लिए गया तो वह गलत संगति में पड़ गया, ऐसी जगह जाने लगा जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। नए संसार को देखने का अवसर उसे मिला, परंतु उसका विवेक दोषी ठहरा रहा था। अतः घर लौट आया और वहां उससे एक पास्टर से मुलाकात हुई और तब उसने कहा कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ शांति बना सकता हूं और विश्वास द्वारा धार्मिकता में वह आ सकता है। परंतु वह उस दुष्ट संगति को कभी भूल नहीं पाया। युवकों को उनसे सावधान रहना है। युवक को एक और मनुष्य से सावधान रहना है, वह है अपरिचित स्त्री। नीति वचन 2 उसके 16 से 22 पद में लिखा हुआ है, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। मेरे मित्रों, यह अपरिचित स्त्री कौन है? इसराइल के लिए परमेश्वर का नियम था कि वह वेश्यावृत्ति में नहीं पड़ेगी। ऐसी स्त्री पापिन गिनी जाएगी और समाज से बाहर कर दी जाएगी। एक अपरिचित मनुष्य वह होता है जो अन्य जाति था। ऐसी स्त्री देह का व्यापार करने अन्य जाति से आती थी। अतः युवक को उसके बारे में चेतावनी दी गई है। उसे स्पष्ट बताया गया है कि उसका अंत क्या होगा। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। परमेश्वर उसके विरुद्ध हमें चेतावनी देता है आज के युग में यौन संबंध की स्वतंत्रता के कारण एड्स महामारी का रूप धारण किए हुए है। हमारे देश में बहुत सारे युवाओं में ये बीमारी पाई जा रही है। मैं युवा अवस्था में एक संस्था का सदस्य था। उस संस्था का अगुआ एक डॉक्टर था। उसने हम युवाओं को एक सभा में बुलाया, क्योंकि हम युवा बहुत अधिक बाहर जाते थे। उसकी बातें सुनकर मैं आतंकित हो गया। आज कहा जाता है कि हमें अपने युवा वर्ग को डराना नहीं चाहिए, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस डॉक्टर ने हमें डराया। यहां नीति वचन का लेखक ठीक यही कर रहा है। वह युवकों को दुष्ट जनों और पराई स्त्री के प्रति सचेत कर रहा है। मेरे जवान भाई बहनों, मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी किस प्रकार की है, आप किस संसार में जी रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को भली भांति जानते हैं। यदि आप ऐसा कुछ जीवन जी रहे हैं जो आपके लिए हानि और गड्ढे का कारण बन रहा है, तो अभी भी आप सचेत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपरिचित स्त्री की ओर जाते हैं तो निश्चय ही हमारा अंत विनाश है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और इस नीति वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जवान भाई और बहन परमेश्वर से प्रेम करें, उसके निकटता में बने रहें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।